ओम शांति।
ओम शांति।
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर स्वयं निराकार परमात्मा ने जो अमूल्य विश्व कल्याणी महावाक्य उच्चारे, उसी के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत कर रहा है विश्व का अंतिम सत्य तथा भारत की प्राचीन दैवी संस्कृति का साक्षात्कार कराने वाला एक आध्यात्मिक महानाट्य सत्य महाभारत।
महाभारत की वास्तविकता प्रस्तुत कर मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करने वाला एक अप्रतिम नाट्य सत्य महाभारत।
अंधश्रद्धा का पूर्णतः निर्मूलन कर यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान एवं मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य देने वाला विश्व का सबसे कल्याणकारी महानाट्य
सत्य महाभारत।
सत्य महाभारत। इस महानाट्य में भाग लेने वाले कलाकार इस प्रकार है। विशेष निवेदन, श्रीमती गौरी लागू।
प्रास्ताविक एवं अंतिम कथन, भ्राता राहुल सोलापुरकर।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भूमिका, भ्राता निमिष तोटे।
महावीर अर्जुन की भूमिका, भ्राता सुहास कुलकर्णी।
पार्श्व संगीत नियोजन, भ्राता धनंजय साठे।
आध्यात्मिक मार्गदर्शन, राजयोगिनी सुंदरी बहन जी एवं पद्मा बहन जी, ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र, मीरा सोसाइटी, पुणे।
निमित्त लेखक, निर्माता एवं निर्देशन, ब्रह्मा कुमार जगदीश दीक्षित।
संगीत दिग्दर्शन तथा गायन, श्रीमती चारुशिला बेलसरे। विशेष सहभाग, भ्राता धनंजय साठे एवं भ्राता प्रमोद चिल्लार। ध्वनि मुद्रण, भ्राता मुकुंद फड़कले, स्टूडियो एलकॉम, पुणे, महाराष्ट्र। ओम शांति। आज आपको इस आध्यात्मिक नाटक का चौथा भाग श्रवण करना है, कर्मातीत एवं जीवन मुक्त अवस्था। इस सर्वश्रेष्ठ अवस्था को 100% प्राप्त करने वाला दिव्य पुरुष पिताश्री ब्रह्मा ही है, जिनका जन्म इसी भारत भूमि में हुआ था। उनका सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि नवयुग निर्माण करने अर्थ स्वयं परमात्मा ने उनके शरीर रथ में प्रवेश किया।
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदायी किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
हे मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रणाम स्वीकार करे।
प्रणाम स्वीकार है पार्थ। जीवन मुक्त भव, कर्मातीत भव। अनुज, आज का ये दिवस तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम जीवन मुक्त एवं कर्मातीत इन दो महान अवस्थाओं को प्राप्त करोगे तो अहो सौभाग्य, तुम अपने जन्म जन्मांतर के भाग्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा अनेक जन्मों का भाग्य इन्हीं दो अवस्थाओं पर निर्भर है।
परंतु हे राजाधिराज, इन दो अवस्थाओं के प्रति मैं पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ। अर्थात आज का स्वाध्याय आरंभ करे वासुदेव।
हे महावीर अर्जुन, यदि तुम्हें जीवन मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्पूर्व मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। समस्त आत्माओं के प्रति ये मुक्ति की प्रक्रिया कल्प के अंत में ही होती है, जबकि इस मनुष्य सृष्टि का महाविनाश होता है। तत्पश्चात इस साकार सृष्टि पर अत्यल्प मनुष्य आत्माएं शेष रहती है और बहुतांश आत्माएं मुक्ति धाम में प्रस्थान करती है, जिस मुक्ति धाम को आत्माओं का मूल निवास स्थान कहा जाता है। जब तक आत्मा शरीर द्वारा इस साकार मनुष्य सृष्टि पर प्रथम जन्म प्राप्त नहीं करती, तब तक आत्मा मुक्ति धाम में अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अवस्था में होती है, उसे ही मुक्ति कहते हैं। पार्थ, मुक्ति वो अवस्था है जिसमें आत्मा ना सुख का अनुभव करती है ना दुख का, ना उसे देह का भान, ना देह संबंधियों का भान और ना ही स्वयं का भान। अर्थात आत्मा पूर्णतः संकल्प रहित अवस्था में होती है।
केशव, ये मुक्ति की अवस्था अत्यंत विचित्र है। अब प्रश्न ये निर्माण होता है मधुसूदन, कि सभी आत्माओं को इस प्रकार कितना समय मुक्तिधाम में रहना पड़ता है?
हे धनंजय, प्रत्येक आत्मा के मुक्ति का काल भिन्न भिन्न है। जो मनुष्य आत्माएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा द्वारा जीवन मुक्ति का ज्ञान ग्रहण करती है, उन्हें पुरुषार्थ अनुसार जीवन मुक्ति के युग में अर्थात सतयुग में जन्म प्राप्त होता है। जो सतयुग में जन्म प्राप्त करते हैं उन्हें अल्प काल की मुक्ति अवश्य होती है। कुरुनंदन, जो मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंत तक भक्ति ही करती है, उनका जन्म भक्ति के युग में अर्थात द्वापर युग में होता है। इस प्रकार आधा कल्प के लिए भक्तों को मुक्ति प्राप्त होती है। देखो अनुज, ये नाटक कितना नियोजनबद्ध है। परमात्मा द्वारा अत्यल्प मनुष्य ही जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप सतयुग के आदि में जनसंख्या केवल 9 लाख ही होती है। सतयुग के आरंभ से त्रेता युग के अंत तक संगम युगी पुरुषार्थ अनुसार मुक्ति धाम से आकर भिन्न भिन्न आत्माएं विभिन्न काल में जन्म प्राप्त करती ही है। फलस्वरूप त्रेता युग के अंत में जनसंख्या 33 कोटि होती है और इसकी वृद्धि होते होते कलयुग के अंत में जनसंख्या 600 कोटि से भी अधिक होती है। भरत श्रेष्ठ, सतयुगी मनुष्य संपूर्ण जीवन मुक्त था तो कलयुग में विकारों के कारण बहुतांश आत्माएं जीवन बंध में आती है। परमात्मा पुनः सभी को जीवन मुक्ति का ज्ञान प्रदान करता है, फलस्वरूप पुनः सतयुग के आदि में 9 लाख ही प्रजा होती है। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसी समय बहुतांश आत्माएं मुक्ति धाम में होती है।
हे पद्मनाभ, अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि कई साधकों ने भक्ति के माध्यम से मुक्ति के लिए पुरुषार्थ किया है, क्या ऐसा पुरुषार्थ करने के पश्चात भी उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई? क्या केवल सृष्टि के महाविनाश के उपरांत ही सर्व आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है?
अनुज, परम धाम से आत्मा का इस साकार सृष्टि पर आगमन होने के पश्चात सतयुग से कलयुग के अंत तक कर्म एवं कर्मफल के कारण उसे अनेक जन्म प्राप्त होते ही हैं। अर्थात महाविनाश के उपरांत ही सर्व आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है। पार्थ, ये मनुष्य सृष्टि का अटल नियम है, इस नियम को कौन खंडित कर सकता है? अतः तुम्हें मुक्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ करना है तो जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करो। पार्थ, जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करो।
हे जनार्दन, मुक्ति की अवस्था कैसे होती है? किसे अधिक काल तथा किसे अल्पकाल मुक्ति प्राप्त होती है, इसका ज्ञान आपने उत्तम रीति प्रदान किया है। इस विषय में मेरे मन में कोई संभ्रम नहीं है। अब मैं जीवन मुक्ति के विषय में ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ।
अनुज, जीवन मुक्ति का अर्थ है मानवीय जीवन होते हुए भी आत्मा ने मुक्त अवस्था का अनुभव करना, न उसे विकारों का बंधन, न विकर्मों का बंधन और न ही सगे संबंधियों का कर्म बंधन होता है। पार्थ, ये ना समझो कि साधक किसी के कर्म संबंध में आता ही नहीं, परंतु कर्म संबंध में आते हुए भी उसका किसी के साथ अंशमात्र भी कर्म बंधन निर्माण नहीं होता। यही साधक का कर्म कौशल्य है। वो देह अभिमान सहित 5 मनोविकारों का पूर्णतः निर्मूलन करता है, फलस्वरूप उसे दुख होता ही नहीं। हे धनंजय, यदि कर्म बंधन समाप्त करके निर्बंधन बनना है तो उसका आधार है ज्ञान और योग। ज्ञान और योग वो अस्त्र शस्त्र है जिससे जन जन्मांतर के कर्म बंधन एवं पापों का भार नष्ट होता है। इसी प्रकार समस्त कर्म बंधन एवं विकार नष्ट होने के उपरांत ही साधक जीवन मुक्ति का अद्वितीय अनुभव कर सकता है, जिसे संगम युगी पुरुषार्थी जीवन मुक्ति कहा जाता है।
हे पद्मनाभ, इस प्रकार की जीवन मुक्ति परमात्मा से प्राप्त करने का महान पुरुषार्थ प्रत्येक मनुष्य आत्मा ने अवश्य करना चाहिए।
नहीं कुरुनंदन, केवल ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियां ही इस प्रकार की जीवन मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। पार्थ, तुम्हें भी ये पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करने से ही तुम्हें सतयुगी जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। सतयुग है ही जीवन मुक्ति का युग। सतयुग में प्रत्येक आत्मा सहज ही जीवन मुक्ति प्राप्त करती है, क्योंकि वहां माया अर्थात 5 विकार होते ही नहीं। पार्थ, दोनों प्रकार की जीवन मुक्ति केवल निराकार परमात्मा से ही प्राप्त होती है।
हे वासुदेव, इस भारतवर्ष में अनेक महान संत होकर गए हैं और आज भी कई महान संत अपना मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं, क्या वे मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे नहीं सकते?
नहीं अर्जुन, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान परमात्मा के व्यतिरिक्त कोई भी नहीं दे सकता। कहा भी जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता केवल एक परमात्मा ही है। मनुष्य मुक्ति को अवश्य जानता है, परंतु जीवन मुक्ति इस शब्द का उच्चारण केवल संगम युग पर परमात्मा द्वारा ही बारंबार किया जाता है, क्योंकि जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ ज्ञान परमात्मा के पास ही है। ज्ञान के आधार से अपना विवेक जागृत करो पार्थ, जो इस देह के बंधन से, 5 तत्वों के बंधन से, परिस्थिति के बंधन से, विकारों के बंधन से, दुख अशांति के बंधन से सदा मुक्त है, वही मुक्ति जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करने का अधिकारी है। पार्थ, जो केवल मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हें जीवन मुक्ति की अविज्ञा है, वे भला मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? अतः केवल अजन्मा परमात्मा से ही आत्मा को जीवन मुक्ति का वर्षा तथा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जीवन मुक्ति का अर्थ है सभी कर्म बंधन से मुक्त, देह अभिमान से मुक्त, 5 विकारों से मुक्त, परिस्थिति के परिणाम से मुक्त एवं किसी भी व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के उपरांत साधक के मन पर केवल एक ही निराकार का प्रभाव होता है। समझ गए पार्थ, जीवन मुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा प्राप्त होती है, कौन इसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है और किस युग में प्राप्त होती है?
हे मधुसूदन, अब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि मुक्ति समस्त आत्माओं को मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति अत्यल्प आत्माएं प्राप्त करती है। अर्थात जीवन मुक्ति ही मानव जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। परंतु आज के बड़े बड़े आचार्य पंडित तो ये कहते हैं मानव का अंतिम श्रेष्ठ लक्ष्य मोक्ष ही है, और भगवद गीता में भी मनुष्य मात्र के लिए यही लक्ष्य दिया गया है। हे ऋषिकेश, आप ही इस मोक्ष की अवस्था का विवेचन कर सकते हैं।
सत्य कहूं पार्थ, मोक्ष कभी किसी को प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि मोक्ष केवल मानवीय भ्रम है। पार्थ, मानवीय भ्रम है, ये कोई वास्तविकता थोड़े ही है। अनुज, मोक्ष के प्रति मानवीय कल्पना ऐसी है कि पुण्य कर्म करने वाला कोई योगी जब अपने भौतिक शरीर का परित्याग करता है तत्पूर्व प्रभु मिलन के व्यतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, तब उसकी आत्मा मुक्ति धाम जाकर परमात्मा में लीन हो जाती है और पुनश्च कभी इस साकार सृष्टि पर जन्म प्राप्त नहीं करती, अर्थात उसे सदाकाल की मुक्ति मिलती है। हे महाबाहो, सत्य तो यह है कि मोक्ष के लिए कोई कितनी भी तपस्या करें, परंतु मोक्ष किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आत्मा मोक्ष प्राप्त करे ये स्वयं परमात्मा की भी इच्छा नहीं है। अतः परमात्मा यही कर्म सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य आत्मा जीवन के अंत तक कर्म करती ही है, परिणाम स्वरूप कर्म फल अथवा प्रारब्ध भोगने के लिए उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता ही है। कर्म का बीज बोया है तो उसका फल खाना ही पड़ता है। परम सत्य तो यह है कि मोक्ष की अवस्था भगवान को भी नहीं है, क्योंकि उसे भी धर्म लाने के समय गीता ज्ञान देने अर्थ प्रत्येक 5000 वर्षों के उपरांत इस धरा पर अवतरित होना ही पड़ता है। वही प्रत्येक कल्प के अंत में जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात सत्य गीता ज्ञान वही है जो केवल जीवन मुक्ति के लिए दिया जाता है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्ति ही गीता का अंतिम उद्देश्य है, ना कि मोक्ष। तनिक सोचो पार्थ, यदि सभी महान आत्माएं मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेंगी तो इस समाज को कौन मार्गदर्शन करेगा? नर से श्रीनारायण बनने का पुरुषार्थ कौन करेगा? प्रत्येक मनुष्य आत्मा ये पुरुषार्थ करे, यही स्वयं भगवान की इच्छा है। और उसी इच्छा का सम्मान करते हुए निराकार परमात्मा से गीता ज्ञान अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मोक्ष के विषय में तुम्हारा कोई भी चिंतन नहीं चलना चाहिए। अब तुम्हें अन्य कोई प्रश्न पूछना है तो अवश्य पूछो पार्थ।
हे पद्मनाभ, मुक्ति जीवन मुक्ति तथा मोक्ष के विषय में आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसके प्रति मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब मैं स्वर्ग की वास्तविकता जानना चाहता हूँ। स्वर्ग के विषय में मनुष्यों की यही मान्यता है कि जब कोई पुण्यात्मा देह का परित्याग करती है तत्पश्चात वो स्वर्ग में जाती है, जिस स्वर्ग को आकाश तत्व के पार माना गया है, जहाँ रंभा, मेनका, अप्सरा एवं इंद्र सहित अनेक देव होते हैं। हे ऋषिकेश, क्या आकाश तत्व के पार इस प्रकार का स्वर्ग है?
हे पार्थ, इस विषय में मानव पूर्णतः अंधश्रद्धा में है। यदि वास्तविक स्वर्ग का एवं पुनर्जन्म का मानव को यथार्थ ज्ञान होता तो वो कभी इस वाक्य का प्रयोग न करता कि मनुष्य मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाता है। इस विषय में सभी मनुष्य मात्र अनभिज्ञ हैं। पार्थ, ये किसी को भी ज्ञात नहीं कि जब सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का दैवी स्वराज्य था तब सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठाचारी देवी देवता थे। वहां सुख शांति पवित्रता का मंगलदायी वातावरण था। वहां तन मन धन एवं वैभव से मनुष्य परिपूर्ण था। वहां कोई असुरी वृत्ति के मनुष्य नहीं थे। राजा तथा प्रजा दोनों भी 16 कला संपूर्ण पवित्र थे। जहां काम क्रोधादि विकार अंश मात्र भी नहीं थे, ऐसे मनभावन भारत भूमि पर ही स्वर्ग था। ये भारत भूमि ही स्वर्ग का वास्तविक स्थान है पार्थ। स्वर्ग कहीं ऊर्ध्व दिशा में नहीं परंतु इसी साकार सृष्टि पर होता है।
हे पद्मनाभ, मुझे यह श्रवण कर अत्यानंद हुआ है कि इसी भारत वर्ष में स्वर्ग था। अब नर्क की वास्तविकता कथन करे ज्येष्ठ भ्राता।
पार्थ, यदि तुम्हें नर्क की वास्तविकता प्रतीत करनी है तो तनिक विश्व की वर्तमान स्थिति का परीक्षण करो। इस विश्व का जब कोई बुद्धिमान तथा आध्यात्म ज्ञानी परीक्षण करेगा तो उसे यही कहना पड़ेगा कि 5 विकारों के कारण ही ये संपूर्ण मनुष्य सृष्टि नर्क हो चुकी है। अनुज, 5 विकार ही नर्क की निर्मिति की जड़ है। 5 विकारों के कारण ही मनुष्यों को अनेक कर्मभोग भोगने पड़ते हैं। भिन्न भिन्न शारीरिक व्याधियों के कारण कई मनुष्य जर्जर हो चुके हैं। दुर्घटना, आतंकवाद एवं प्राकृतिक आपदाओं द्वारा इस विश्व में भारी मात्रा में मृत्यु हो रही है। जहां मानवीय जीवन तनावयुक्त, भयग्रस्त एवं अशाश्वत हो चुका है, इस प्रकार जहां दुख ही दुख है, जहां अशांति ही अशांति है, जहां काम क्रोधादि विकारों के कारण अपवित्रता की परिसीमा हो चुकी है, वो नरक नहीं तो और क्या है पार्थ?
केशव, केशव, मैं अब पूर्ण रीति से समझ गया कि नरक एवं स्वर्ग में क्या अंतर है तथा उनका स्थान कौन सा है। जब इस भूमि पर पूज्य देवी देवता निवास करते हैं तब ये भूमि स्वर्ग होती है, परंतु मनुष्य अपने ही विकर्मों द्वारा स्वर्ग का नरक में परिवर्तन करता है।
अनुज, ये सदा ध्यान रहे कि मनुष्य के लिए दो ही लोक है, एक निराकारी आत्माओं का ब्रह्म लोक और ये साकार लोक। सभी आत्माओं को अपनी भूमिका निभाने अर्थ इस साकार लोक में आना ही पड़ता है, चाहे देवता हो या साधारण मानव, इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता पार्थ। अब मनुष्य निर्मित स्वर्ग की परिभाषा ना करो, परंतु परमात्म निर्मित स्वर्ग की परिभाषा सभी के सम्मुख प्रस्तुत करो। तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि मनुष्य आत्मा मृत्यु के उपरांत ना परमधाम में मुक्ति के लिए जाती है और ना ही कहीं आकाश तत्व के पार स्वर्ग में, परंतु उसे पुनर्जन्म अवश्य प्राप्त होता है। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा सभी को सतयुगी स्वर्ग में जाने की यही विधि प्रकट करते हैं कि जब तक आत्मा स्वयं को ज्ञान और योग के आधार से पवित्र, कर्मातीत एवं जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं करती, तब तक स्वर्ग में जाने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात सतयुगी स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो ही नहीं सकता। अतः हे महावीर, पहले स्वयं की कर्मातीत अवस्था प्राप्त करो तो जीवन मुक्ति का रोमांचकारी अनुभव प्राप्त कर सकते हो।
हे मधुसूदन, कर्मातीत का अर्थ कहीं ये तो नहीं कि कर्म का संन्यास करना?
नहीं गुड़ाकेशा, मानव जीवन में कर्म संन्यास कभी होता ही नहीं, क्योंकि मानवीय जीवन एवं कर्म इनका अटूट संबंध है। तथापि मैं तुम्हें कर्म संन्यास की परिभाषा का कथन करता हूँ। तुम्हें तो यह ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा शरीर रहित होती है और जब तक उसे दूसरा जन्म प्राप्त नहीं होता तब तक आत्मा कर्म से मुक्त होती है। इस प्रकार कर्म से मुक्त होना यही कर्म संन्यास है। पार्थ, मुक्ति धाम में मुक्ति की अवस्था में रहना ये भी आत्मा का कर्म संन्यास ही है, परंतु शरीर सहित कर्म का संन्यास होना असंभव है।
हे श्रीनाथ, मैं कर्म संन्यास की परिभाषा समझ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कर्मातीत अवस्था किसे कहते हैं एवं कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के उपरांत मनुष्य आत्मा में कौन सा परिवर्तन आता है?
एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो पार्थ। साधक भौतिक शरीर द्वारा कर्म करते हुए कर्म संबंध में अवश्य आता है, परंतु कर्म का प्रभाव उसके मन पर तनिक मात्र भी नहीं होता, अर्थात कौन सा भी कर्म उसके मन बुद्धि को न बांध सकता है न खींच सकता है, क्योंकि कर्म करने के पूर्व जितने संकल्पों की आवश्यकता है उतने ही संकल्प साधक करता है। कर्म समाप्ति पर एक भी संकल्प उसके मन में निर्माण नहीं होता, चाहे उसका कर्म व्यक्तिगत हो अथवा कर्म का संबंध अन्य आत्माओं से हो, क्योंकि उसका कर्म बहुत ही ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त एवं बंधन मुक्त होता है। अनुज, कर्म बंधन उसे कहते हैं जिस कर्म द्वारा वर्तमान और भविष्य में किसी को दुख दिया जाता है अथवा किसी से दुख लिया जाता है। यदि संकल्पों द्वारा साधक किसी को दुख देता है अथवा अन्य किसी आत्मा का कर्म देखकर उसे अंशमात्र भी दुख होता है तो वही दुख कर्म बंधन बनने के कारण संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने नहीं देता। पार्थ, कर्मातीत अवस्था स्थायी रखने के लिए कर्म कौशल्य की आवश्यकता होती है, अर्थात कर्म कौशल्य का आधार ज्ञान और योग ही है। साधक का कर्म कौशल्य यही है, साधक का कर्म कौशल्य यही है कि स्वयं को कर्म बंधन से सुरक्षित रखते हुए अन्य किसी आत्मा का उसके प्रति संकल्प मात्र में भी कर्म बंधन निर्माण होने ना देना। उसका प्रत्येक कर्म स्वयं को और अन्य आत्मा को सुख, शांति, आनंद एवं संतुष्टता देने वाला ही होता है। भरत श्रेष्ठ, यही है कर्मातीत अवस्था की यथार्थ परिभाषा। कर्मातीत होना यह मनुष्य आत्मा के लिए ऊंची अवस्था एवं महान लक्ष्य है।
हे श्रीनाथ, यदि कोई साधक पूर्णतः कर्मातीत अवस्था प्राप्त करता है तो उसमें कौन से विशेष लक्षण होते हैं?
पार्थ, कर्मातीत वो है जो सुख दुख, लाभ हानि, किसी का जन्म किसी की मृत्यु, इसमें एक रस तथा स्थितप्रज्ञ रहता है। वो जीवन की प्रत्येक सुखदाई अथवा दुखदाई घटना को आनंद से स्वीकार करता है। समाज में रहते हुए किसी भी व्यक्ति वैभव, साधन एवं पांच तत्व इनके प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहता है, क्योंकि उसके मन पर केवल एक ही परमात्मा का प्रभाव होता है। पार्थ, अन्य किसी भी देहधारी का प्रभाव साधक को कर्मातीत अवस्था से वंचित कर देता है। जिसने अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था प्राप्त की है, उसे ज्ञान युक्त एवं आनंद युक्त वैराग्य प्राप्ति के कारण इस संसार में कौन सी भी परिस्थिति निर्माण हो, वो सदा सच्चिद आनंद स्वरूप रहता है। पार्थ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी को सहयोग नहीं देगा। अन्य आत्माओं को सहयोग देना ये तो उसका प्रथम कर्तव्य है, परंतु सहयोग देते हुए भी ना उस व्यक्ति की व्यथा से व्यथित होगा, ना परिस्थिति के प्रभाव में आएगा। हे महाबाहो, कर्मातीत वो है जो परिस्थिति जीत, कर्मेंद्रिया जीत, माया जीत, निद्रा जीत, संकल्प जीत तथा प्रकृति जीत है।
हे भ्राता कृष्ण, आपने कर्मातीत अवस्था के समस्त लक्षण प्रकट किए हैं, परंतु इस प्रकृति जीत का अर्थ क्या है?
हे वीर धनंजय, प्रकृति जीत अर्थात साधक कभी पांच तत्वों के कारण निर्माण होने वाली परिस्थिति से ना अशांत होगा, ना ये पांच तत्वों का शरीर उसे अशांत कर सकता है। उसकी स्थिति इतनी ऊंची होगी कि माया भी उसकी शक्तिशाली अवस्था देखकर उसे प्रणाम करके सदा के लिए चली जाएगी। उसकी कर्मातीत एवं योगयुक्त अवस्था एक रस होगी। वो सदा मन बुद्धि से परमधाम में परमात्मा के पास रहेगा। जिसने पूर्णतः कर्मातीत अवस्था प्राप्त की है, वो योग साधना में अपना अव्यक्त रूप धारण करके योगदान तथा असीम सेवा करने अर्थ समस्त विश्व को परिक्रमा लगाएगा। पार्थ, वो परमात्मा को इतना सिमिरन करेगा कि भक्ति मार्ग में निर्माण होने वाली 108 मणियों की सिमिरन माला में अपना स्थान निश्चित करेगा। उसका प्रत्येक कर्म परमात्मा की श्रीमत अनुसार ही होगा। कर्म करते हुए साधक के मन में यही निमित्त भाव रहता है कि परमात्मा करण करावन हार है, वो मुझसे कर्म करवा रहा है, अर्थात अहम भाव से पूर्णतः मुक्त। उसका प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ ही होगा। उसने मन द्वारा किया हुआ प्रत्येक श्रेष्ठ संकल्प, वाणी द्वारा उच्चारा हुआ प्रत्येक महावाक्य एवं कर्मेंद्रियों द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म विश्व कल्याणार्थ होगा। वो कर्म से आनंद अवश्य प्राप्त करेगा, परंतु ना उसकी कर्म में आसक्ति होगी, ना वो कर्म में लिप्त होगा। इस प्रकार उसका प्रत्येक कर्म दिव्य एवं महान होने के कारण अन्य आत्माएं यही अनुभव करेगी कि ये तो कोई अवतरित आत्मा है।
हे मधुसूदन, ये कर्मातीत अवस्था तो बहुत ही गहन एवं ऊंची है, अतः इस विषय का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है।
भरत श्रेष्ठ, जिसने ये परिपूर्ण अवस्था प्राप्त की है, उसे न कभी स्व की, न स्वधर्म की और न ही परमात्मा की विस्मृति होती है। उसका प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, योग युक्त होकर जिसने अपने कर्म परमात्मा को समर्पित किए हैं, ज्ञान के आधार से जिसके समस्त संशय नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आत्माभिमानी पुरुष को कर्म कभी बांध नहीं सकते। अर्थात जो आत्माभिमानी है, वही परमात्मा से निरंतर योग युक्त रह सकता है। योग से ही योगी कर्मातीत अवस्था के महान लक्ष्य तक पहुंचता है। पार्थ, जिस परमात्मा का अस्तित्व सदा मुक्तिधाम में है, जो देह का बंधन, देह के संबंधियों का बंधन तथा कर्म के बंधन से सदा मुक्त है, ऐसा निराकार परमात्मा ही मनुष्य आत्मा को साकार सृष्टि पर कर्मातीत एवं जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करा देता है। जीवन मुक्ति का प्रथम आधार है कर्मातीत अवस्था। जब तक मनुष्य आत्मा कर्म से अतीत नहीं होती, तब तक कर्म बंधन तथा उसके प्रभाव से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। ना वो कर्मातीत हो सकती है, ना ही जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव कर सकती है। पार्थ, ये सदा स्मृति में रहे कि कर्म करते करते ही कर्मातीत अवस्था प्राप्त होती है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कर्म योग। कर्म योग ही आत्मा को कर्म बंधन एवं कर्म के प्रभाव से मुक्त करता है।
हे श्याम सुंदर,
जिसने स्वयं के कर्म बंधन पूर्णता समाप्त किए हैं, जो कर्म के प्रभाव से सदा मुक्त है, जिसने उच्च प्रति की कर्मातीत एवं जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की है, ऐसा आदर्शवादी व्यक्ति कौन है?
पार्थ, शेषशायी शैया पर चिंता मुक्त, निर्भय, निश्चिंत एवं सुखदायी स्थिति में श्री विष्णु विराजमान हुए हैं। कई वर्षों से ये चित्र सभी देखते आए हैं, परंतु कोई विरला ही इस पर विचार करता है। अनुज, ये चित्र तो आत्मा के जीवन मुक्त, कर्मातीत तथा स्थितप्रज्ञ स्थिति का सर्वोत्तम प्रतीक है। शेष अर्थात ये पंचमुखी नाग तो पांच विकारों का प्रतीक है। पंचमुखी नाग की शैया पर विराजमान होना यही पांच विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। महत्वपूर्ण चिंतन तो यह है कि श्री विष्णु के समय अर्थात सतयुग में न कोई विषैले प्राणी होते हैं, न विषैले पांच विकार। वास्तविक ये चित्र श्री नारायण का पूर्व जन्म प्रजापिता ब्रह्मा का होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ही पांच विकारों का प्रभाव अधिक होता है। ब्रह्मा ही उन पांच विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर अपनी परिपूर्ण कर्मातीत अवस्था प्राप्त करता है। अब तक केवल प्रजापिता ब्रह्मा ने ही अपनी संपूर्ण कर्मातीत एवं जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की है, अतः उसने अपने भौतिक शरीर का परित्याग करके सूक्ष्म वायु रूप शरीर धारण किया है। इसके उपरांत ब्रह्मा का जन्म तो सतयुग में होता है, अर्थात वो जन्म है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का, जिसे तुम आज अपने सम्मुख देख रहे हो। समझ गए भरत श्रेष्ठ, श्री कृष्ण की चैतन्य मूर्ति कैसे निर्माण होती है और उस चैतन्य मूर्ति को निर्माण करने वाला अद्भुत मूर्तिकार कौन है? इस संसार में यह कोई नहीं जानता कि श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में कर्मातीत तथा जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने का महान पुरुषार्थ किया था। पार्थ, इन्हीं दो अवस्थाओं के आधार पर ही मनुष्य आत्मा को परम पिता द्वारा 21 जन्मों के लिए सुख शांति का अलौकिक वर्षा प्राप्त होता है।
हे पद्मनाभ, मैं भी भविष्य में अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर भाग्य विधाता द्वारा 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा अवश्य प्राप्त करूंगा। हे मधुसूदन, मैं स्वयं को केवल भाग्यशाली ही नहीं परंतु पद्मा पदम भाग्यशाली होने का अनुभव कर रहा हूँ। आपके मुख कमल से ज्ञान का एक एक आश्चर्यकारक गुह्य रहस्य मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जिससे आश्चर्य एवं आनंद की सम्मिश्र भावना मेरे अंतकरण में निर्माण हुई है। आपकी आत्मिक दृष्टि एवं आत्मिक भाव से मुझे अपने देहभान की ही विस्मृति हुई है।
हे पार्थ, इसकी विस्मृति कभी न हो कि जिसे अनादि काल से देह नहीं है वो ही विदेही परमात्मा मनुष्य आत्माओं की विदेही अवस्था प्राप्त कराता है। इसका अनुभव प्रत्येक मनुष्य आत्मा योग में कर सकती है। परमात्मा ही मनुष्य आत्माओं के जन्म जन्मांतर के विकर्म अथवा पाप कर्म भस्म करने वाला है। वो ही सभी साधकों की कर्मातीत एवं जीवन मुक्त अवस्था कराता है। वही मनुष्य को देवत्व पद प्रदान करता है। वही सभी आत्माओं की गति सदगति करने वाला एक ही सद्गुरु है। अतः हे सद्गुरु के सदशिष्य, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि गुरु तथा सद्गुरु के भेद को यथार्थ रीति प्रतीत करना।
हे ऋषिकेश, वर्तमान समय ऐसे कई गुरु है जिन्होंने अपने नाम के पूर्व सद्गुरु की उपाधि लगाई है।
हे धनंजय, यही तो मैं कथन करना चाहता हूँ। सद्गुरु वही है जो धर्म ग्लानि समय अवतरित होकर गीता ज्ञान प्रदान करते हैं। सद्गुरु वही है जो एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवद गीता ही सद्गति का एवं सद्गुरु का ज्ञान है। अतः अन्य किसी भी गुरु ने सद्गुरु की उपाधि लगाना उचित नहीं है। अन्य महात्माएं गुरु तो अवश्य हैं, परंतु परमात्मा गुरुओं का भी सद्गुरु है। परमात्मा इस जगत में स्वर्ग निर्माण करता है, अर्थात संपूर्ण जगत का ही उद्धार करने वाला जगत गुरु निराकार परमात्मा के व्यतिरिक्त और कौन हो सकता है? पार्थ, कोई भी देहधारी ना सद्गुरु का स्थान प्राप्त कर सकता है ना जगत गुरु का। अतः गुरु एवं सद्गुरु के भेद को यथार्थ रीति जानो पार्थ। गुरु अनेक होते हैं परंतु सद्गुरु एक ही होता है। गुरु माता के गर्भ से जन्म प्राप्त करते हैं परंतु सद्गुरु जन्म मृत्यु से मुक्त होने के कारण परकाया प्रवेश द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त करते हैं। सद्गुरु वही है जो कलयुग को समाप्त कर सतयुग स्थापन करता है। पार्थ, केवल सद्गुरु ही ये महावाक्य उच्चारण करता है कि मैं आया हूं सभी आत्माओं को परमधाम ले जाने, मैं ही सभी आत्माओं का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता हूं। पार्थ, सद्गुरु वही है जो स्थापना, पालना एवं विनाश का कर्म त्रिदेवों द्वारा कराता है। सद्गुरु वही है जो सदा सतोप्रधान है। हे धनंजय, सत्य तो यह है कि प्रत्येक गुरु को सतो, रजो, तमो के चक्र में आना ही पड़ता है। अतः कोई भी गुरु उद्धार का ज्ञान नहीं दे सकता। उद्धार का ज्ञान देने का अधिकार केवल सद्गुरु परमात्मा का ही है। इस सूक्ष्म एवं गुह्य चिंतन को अपनी बुद्धि में अवश्य धारण करो।
हे गोपाल कृष्ण, अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि गुरु के प्रति हमारा आचरण किस प्रकार होना चाहिए।
पार्थ, सर्वप्रथम तो गुरु के प्रति अपने मन में मान सम्मान तो अवश्य होना चाहिए। मुझे भी उनके प्रति आदर है। यदि वे न होते तो इस मनुष्य सृष्टि का महाविनाश कब का हो जाता। परंतु अब उनसे बुद्धि योग खंडित कर केवल एक सद्गुरु की ही स्मृति रखनी है। भरत श्रेष्ठ, जब सूर्य उदित होकर प्रकाश देता है तब कोई दीप जलाए तो उसे क्या कहेंगे। उसी प्रकार जब ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकट होता है तो आत्मा को सद्गति का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु इस सत्य की कभी विस्मृति ना हो कि उस मार्ग तक पहुंचाने का कर्म गुरु ही करते हैं, अर्थात गुरु के आशीर्वाद से ही सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु वो है पार्थ, जो साधारण नर को श्री नारायण एवं साधारण नारी को श्री लक्ष्मीपद प्राप्त करा देता है। केवल सद्गुरु परमात्मा ही मनुष्य आत्माओं को त्रिकाल ज्ञान प्रदान कर सकता है। ये सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होने से मानवीय जीवन हीरे तुल्य होता है। ये ज्ञान एक संजीवनी बूटी है। इसे ग्रहण करने से आत्मा के समस्त विकार नष्ट होते हैं। अनुज, ये ज्ञान एक अंजन भी है जिससे मानव को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कहा भी जाता है, ज्ञानांजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधकार दूर हुआ। पार्थ, आज तक देहधारियों से जो ज्ञान श्रवण किया, परिणाम स्वरूप तुम्हारी बुद्धि भटकती रही। उस ज्ञान को बुद्धि से निकाल दो और सद्गुरु से ज्ञान योग की अमूल्य शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हारी मेरे प्रति जो भक्ति थी वो अब पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल देने अर्थ स्वयं निराकार सद्गुरु परमात्मा शिव आया है। मनुष्य ये विचार भी नहीं कर सकता कि स्वयं भगवान आकर हमें आध्यात्मिक शिक्षा देगा और हम आत्माओं की अलौकिक पालना करेगा। परंतु इसकी कभी भी स्मृति ना हो कि भक्ति के वृक्ष को ही परमात्म ज्ञान का मधुर फल लगता है। अतः इस फल को प्राप्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है।
इसका अर्थ कहीं ये तो नहीं मधुसूदन कि सभी भक्तों को परमात्म ज्ञान प्राप्त होता ही है।
पार्थ, यदि सभी भक्त देवता बनेंगे तो देवताओं की भक्ति कौन करेगा। अतः भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। बहुतांश भक्त वो है जो कभी परमात्म ज्ञान ग्रहण करते ही नहीं, जो अंत तक भक्तों की ही भूमिका निभाते हैं, और दूसरे अत्यल्प भक्त हैं जो संगम युग पर सद्गुरु परमात्मा से ज्ञान ग्रहण कर भविष्य में देवत्व पद प्राप्त करते हैं।
हे श्री हरि, ऐसी कौन सी आपत्ति निर्माण होती है जिसके कारण बहुतांश भक्त परमात्म ज्ञान प्राप्त करते ही नहीं।
नहीं अनुज, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो प्रत्येक भक्त का अपना अपना निर्णय है। फलस्वरूप बहुतांश भक्त यही विचार करते हैं कि भक्ति में भी अथाह ज्ञान है, भक्ति के कितने बड़े बड़े शास्त्र है, पंडित आचार्य एवं गुरु गीता वेद शास्त्र उपनिषद एवं भागवत पर प्रवचन करते हैं। भक्ति करते करते कई महात्माओं को साक्षात्कार भी हुए हैं, अर्थात भक्ति करने से भी भगवान प्राप्त हो सकता है। पार्थ, यही विचार उन्हें परमात्म ज्ञान से विमुख करता है।
हे मधुसूदन, मैं जानता हूँ कि साक्षात्कार अर्थात स्वयं भगवान ने भक्तों के सम्मुख प्रकट होना।
नहीं अनुज, साक्षात्कार कोई परमात्मा अवतरण थोड़े ही है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने अर्थ परमात्मा ही उन्हें इष्ट देवताओं का साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार से ना कोई स्थापना, पालना, विनाश का कर्म होता है, न कोई सत्य धर्म की स्थापना होती है और न ही साक्षात्कार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे धनंजय, भक्ति में ज्ञान अवश्य है। कई साधक उसका लाभ प्राप्त करके ज्ञानयुक्त अवस्था भी प्राप्त करते हैं, परंतु भक्ति के ज्ञान से कोई श्रेष्ठ युग की निर्मिति नहीं होती और ना ही कोई नर से नारायण होता है। परंतु परमात्मा जब ब्रह्मा तन में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं तो श्रेष्ठ युग एवं श्रेष्ठ मानव की अर्थात सतयुग की निर्मिति होती है। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि ज्ञान सागर परमात्मा तो केवल उद्धार का ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे मनुष्य निर्मित ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। अब मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सद्गुरु परमात्मा से ज्ञान ग्रहण करे। जब तक परमात्मा का अवतरण नहीं होता तब तक भक्ति और भक्ति का मनुष्य निर्मित ज्ञान आवश्यक है, परंतु जब विश्व कल्याणार्थ परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है तब भक्ति तथा भक्ति के ज्ञान का परित्याग करना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा जो सृष्टि परिवर्तन के अर्थ विशेष ज्ञान प्रदान करता है वो ज्ञान भक्ति के शास्त्रों में नहीं है। यदि वो ज्ञान शास्त्रों में होता तो परमात्मा अवतरण की आवश्यकता ही नहीं होती।
हे पद्मनाभ, ऐसा कौन सा विशेष ज्ञान परमात्मा मनुष्य आत्माओं को प्रदान करता है जो शास्त्रों में नहीं है?
अनुज, परमात्मा ये विशेष ज्ञान प्रदान करता है कि तुम देह सहित ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो और मैं देह रहित अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु परमात्मा हूँ। ये किसी को भी ज्ञात नहीं कि परमात्मा का अवतरण कब और कैसे होता है, परमात्मा तथा सभी आत्माएं कहाँ के निवासी है, इस धरा पर आने का मनुष्य आत्माओं का उद्देश्य क्या है, पतित पावन कौन है, स्वर्ग और नरक कहाँ है, उसे कौन निर्माण करता है, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप कौन सा है, 33 कोटि देवताओं की आत्माएं कहाँ चली गई, अथवा जिन देहधारी देवताओं का मनुष्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता है वे सभी वर्तमान समय कहाँ है, ये मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे भ्रमण करता है, उसका आदि मध्य अंत क्या है, संपूर्ण कल्प की आयु कितनी है, एक कल्प में मनुष्य के अधिक से अधिक कितने जन्म होते हैं, ब्रह्मा सरस्वती को किस युग में परमात्मा द्वारा निर्माण किया जाता है, उनका लक्ष्मीनारायण से क्या संबंध है। पार्थ, ऐसे कई प्रश्न है जिनके उत्तर न शास्त्र न कोई मनुष्य दे सकता है।
हे वासुदेव, आपके प्रश्न श्रवण करने के पश्चात मेरा अंतर्मन कह रहा है कि भक्ति और ज्ञान में बहुत बड़ा भेद है। कृपया इस भेद का ज्ञान मुझे विस्तार में बताइए और मेरा संभ्रम दूर कीजिए।
भरत श्रेष्ठ, इसमें संभ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ज्ञान से ही समस्त भेद स्पष्ट होते हैं। भक्ति में मनुष्य चारों धाम की यात्रा करते हैं। पार्थ, देह की यात्रा ही भक्ति है। ज्ञान मार्ग में देहभान की विस्मृति कर आत्मा मन बुद्धि द्वारा परम धाम की यात्रा करती है, अर्थात आत्मिक यात्रा ही ज्ञान है। भक्ति में जड़ से प्रेम होता है तो ज्ञान में ज्योति स्वरूप चैतन्य परमात्मा से प्रेम होता है। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ महिमा श्री विष्णु की होती है तो ज्ञान मार्ग में सर्वश्रेष्ठ महिमा श्री विष्णु का भी रचयिता निराकार परमात्मा की ही होती है। भक्ति में भगवान की रचना से प्रेम होता है तो ज्ञान मार्ग में रचयिता भगवान से प्रेम होता है, अर्थात जो देवी देवता होकर गए हैं उनका स्मरण भक्ति में किया जाता है, तो ज्ञान मार्ग में जिसका अस्तित्व अनंत काल का है उसे स्मरण किया जाता है। परमात्मा ज्ञान से मनुष्य की ये दिव्य स्मृति जागृत होती है कि हम ही देवता थे और हमें ही देवता होना है, अर्थात हम ही पूज्य और हम ही पुजारी होते हैं। परंतु भक्ति में यह स्मृति प्राप्त होना अंशमात्र भी संभव नहीं है। पार्थ, मनुष्य अपने मत पर उपासना करता है, मनुष्य मत ही भक्ति है तो परमात्मा का श्रीमत ही ज्ञान है। भक्ति में जड़ मूर्ति से अलौकिक प्राप्ति करने का पुरुषार्थ होता है तो ज्ञान मार्ग में चैतन्य देवत्व पद ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाता है। भक्ति में वाणी की आवश्यकता होती है तो परमात्मा ज्ञान में अधिकांश मौन की आवश्यकता होती है। भक्ति में मूर्ति, पूजा की सामग्री, 108 मणियों की माला, इन साधनों की आवश्यकता होती है तो ज्ञान में कोई साधन ना होने के उपरांत भी साधना सहज होती है। अतः हे पार्थ, अब तुम्हें माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, अब माला का मणि बनने का समय है। जिस माला को वैजयंती माला कहा जाता है। भरत श्रेष्ठ, वैजयंती माला फेरना ही भक्ति है, तो उस वैजयंती माला का मणि बनना ही ज्ञान है। समझ गए पार्थ, भक्ति और ज्ञान में क्या भेद है? अब इस ज्ञान मार्ग का स्वीकार कर अपना जीवन हिरेतुल्य करो। यही मार्ग तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख शांति प्रदान करेगा, अर्थात ज्ञान मार्ग ही तुम्हारा जन्म जन्मांतर का कल्याण कर सकता है। इस ज्ञान मार्ग में केवल सद्गुरु का दर्शन ही नहीं परंतु मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है।
हे श्री हरि, गुरु और सद्गुरु साथ ही साथ भक्ति और ज्ञान का स्पष्ट भेद मेरी बुद्धि में आ चुका है। केशव, अब भक्ति का रस समाप्त हो चुका है। मेरे अंतकरण में परमात्म ज्ञान की गंगा बहने लगी है। मेरी बुद्धि ने यह निर्णय किया है कि मुझे माला फेरने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु अब मुझे वैजयंती माला का मणि बनना है। हे मनमोहन, इस प्रकार ज्ञान मार्ग में भी माला का महत्व है, तो भक्ति मार्ग में भी इस माला का महत्व असाधारण है। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से जपजाप भी करते हैं और जब समाप्त होने पर उस माला का अपने नयनों से स्पर्श करते हैं। इस माला को कई श्रद्धावान भक्त अपने गले में धारण करते हैं। हे ऋषिकेश, मैंने 8 मणियों की, 108 मणियों की एवं 16108 मणियों की मालाएं देखी हैं। इन भिन्न भिन्न मालाओं की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण ही इन मालाओं को असाधारण महत्व प्राप्त हुआ है?
पार्थ, ये माला कब और कैसे बनती है? इसे वैजयंती माला क्यों कहा जाता है? इस माला का रचयिता कौन है? माला में पिरोए जाने का पुरुषार्थ कौन कराता है? माला के इस गुह्य ज्ञान को कोई विरला ही जानता है। मनुष्य को केवल यही ज्ञात है कि जप जाप्य करने के लिए 108 मणियों की माला का उपयोग किया जाता है। अनुज, माला के प्रथम स्थान में जो फूल होता है वो फूल परमात्मा का प्रतीक है जो इस माला का रचयिता है। फिर दूसरे स्थान में दो जुड़े हुए मणि होते हैं, अर्थात वो दो मणि श्री लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है। पार्थ, लक्ष्मी नारायण ही अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा सरस्वती होते हैं और इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर उन्हें परमात्मा द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने का आदेश मिलता है। यही आदेश ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा की अलौकिक संतान ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों को भी प्राप्त होता है। प्रत्येक आत्मा माया अर्थात 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो करती ही है, परंतु केवल 8 आत्माएं ही माया पर 100% विजय प्राप्त करती है, अर्थात उनके मन में विकारों का अंश भी निर्माण नहीं होता। वे अष्टरत्न 8 मणियों की रुद्रमाला में पिरोए जाते हैं। रुद्र अर्थात परमात्मा और रुद्रमाला अर्थात परमात्मा द्वारा रची गई माला दूसरी माला है 108 मणियों की। पार्थ, जो आत्माएं विकर्माजीत है परंतु माया पर विजय प्राप्त करते समय अल्प मात्रा में क्यों न हो, उनके मन में विकल्प अवश्य आते हैं। ऐसी आत्माएं 108 मणियों की माला में पिरोही जाती है। इसके उपरांत होती है 16108 मणियों की माला। कलयुग में माया का प्रभाव होते हुए भी जो आत्माएं इस प्रकार माया पर विजय प्राप्त कर सतयुग में देवत्व पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं की स्मृति अर्थ वैजयंती माला बनाई जाती है। पार्थ, ये सदा स्मृति में रहे कि जैसा पुरुषार्थ वैसा ही माला में स्थान प्राप्त होता है।
हे कमलाकर, वैजयंती माला का गुह्य रहस्य तो मैं पूर्ण रीति समझ चुका हूँ। सुनते सुनते ही मैंने निश्चय किया है कि इस वैजयंती माला में मणि के रूप में मैं अपना स्थान निश्चित कर उसी अनुसार पुरुषार्थ करूंगा।
मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पार्थ। ये माला भक्त कई वर्षों से फेरते आए हैं परंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही साधारण मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा वैजयंती माला के मणि के रूप में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अनुज, इस प्रकार वैजयंती माला अर्थात विजय की माला कैसे बनती है, इसका महत्वपूर्ण ज्ञान आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारा कोई प्रश्न शेष है तो अवश्य पूछना।
हे पद्मनाभ, भक्ति मार्ग में जो अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं उनका आध्यात्मिक रहस्य आपने यथार्थ रीति स्पष्ट किया है, परंतु केवल एक आध्यात्मिक रहस्य आपने स्पष्ट नहीं किया है, और वो है गीता में वर्णित विराट रूप। हे मधुसूदन, कोटि कोटि मनुष्य इस विराट रूप को आपका ही वास्तविक स्वरूप मानते हैं।
भरत श्रेष्ठ, सत्य तो ये है कि ये विराट रूप ना मेरा है ना ज्योति स्वरूप परमात्मा का है। पार्थ, ये विराट रूप तो परमात्मा के अपने कर्तव्य कर्म का प्रतीक है। परमात्मा का वास्तविक गायन है कि वो विराट रचनाकार है, अर्थात 33 कोटि देवों का वो रचयिता है। इसी के कारण विराट रूप में अधिकाधिक तथा भिन्न भिन्न देवों को दर्शाने का प्रयास चित्रकार ने किया है। पार्थ, जो रचयिता और उसकी रचना का ज्ञान स्पष्ट रीति प्राप्त करेगा, उसके मन में यह संभ्रम कभी नहीं निर्माण होगा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है अथवा उसका अन्य कोई रूप है। इसी विराट रूप में परमात्मा के 3 कर्तव्य कर्म अर्थात स्थापना, पालना एवं विनाश अप्रत्यक्ष रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। केवल बुद्धिमान मनुष्य ही इसे यथार्थ रीति प्रतीत कर सकता है। देखो अर्जुन, यदि कोई महात्मा विश्वव्यापी कार्य करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो महात्मा विश्वव्यापी है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का कर्तव्य कर्म भी विश्वव्यापी है। वो धरती से आकाश तत्व तक अपना कार्य करते हैं, अर्थात आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों को भी वो पावन करते हैं। इसी के कारण विराट रूप आकाश तत्व तक व्याप्त हुआ है। हे भरत श्रेष्ठ, कोई विरला ही ये विचार करता है कि इस प्रकार विराट रूप का साक्षात्कार कराने का उद्देश्य क्या है। अब तुम्हें इस विराट रूप का ज्ञान युक्त अर्थ प्रतीत करना है।
हे नरश्रेष्ठ नारायण, मैंने केवल अभी अभी इतना ही प्रतीत किया है कि विराट रूप में परमात्मा का स्थापना, पालना एवं विनाश का कर्तव्य कर्म प्रकट किया गया है। हे वासुदेव, कृपया आप इस विराट रूप का ज्ञान युक्त अर्थ स्पष्ट करें।
हे महाबाहो, गीता में वर्णित विराट रूप का वर्णन तो अत्यंत रोमांचकारी है। विराट रूप का साक्षात्कार होते ही अर्जुन भयभीत होता है। वो विराट रूप में अकल्पित दृश्य देखता है कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के साथ पांडव पक्ष के प्रधान योद्धा विकराल एवं महाभयानक मुख में शीघ्रता से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों के जल का प्रवाह सागर में स्वाभाविक रीति से प्रवेश करता है, उसी प्रकार इस नरलोक के वीर अग्नि से प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इस विषय में भगवान का महावाक्य यही है कि मैं मनुष्यों का विनाश करने वाला महाकाल हूँ। पार्थ, ये महाभयानक दृश्य देखकर बुद्धिमान एवं ज्ञानी मानव भयभीत नहीं होगा, परंतु वो विराट रूप से यही प्रतीत करेगा कि ये तो अप्रत्यक्ष परमात्मा का विनाश का ही कर्तव्य है। पार्थ, विकराल तथा महाभयानक मुख से जो अग्नि एवं जल की वर्षा हो रही है, इसका गुह्य अर्थ यही है कि इन्हीं तत्वों द्वारा परमात्मा मनुष्य सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। जिस प्रकार विराट रूप द्वारा विनाश का कर्तव्य प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्थापना का कर्तव्य भी प्रकट होता है। क्योंकि विराट रूप में दूसरी ओर विकराल मुख से कई योद्धा पृथ्वी पर प्रवेश कर रहे हैं। हे कुरुनंदन, विराट रूप के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन त्रिदेवों का मंगल दर्शन है। अर्थात ये दर्शन कराने का अंतिम उद्देश्य यही है कि इन्हीं त्रिदेवों द्वारा परमात्मा अपने कर्तव्य कर्म की पूर्तता कराता है।
हे मनमोहन, विराट रूप का अर्थ आपने अत्यंत विवेक युक्त एवं युक्ति युक्त कथन किया है, जिसका मैंने अंतःकरण से स्वीकार किया है। इस विराट रूप का रहस्य ग्रहण करने से मेरे अंतःकरण में आनंद की असंख्य लहरें निर्माण हुई है। अब मैं किसी दैहिक रूप को देखकर ये कदापि नहीं कह सकता कि परमात्मा का रूप ऐसा है।
केशव,
इसमें अंशमात्र भी संदेह नहीं कि अनादि अनंत काल से परमात्मा का ज्योति स्वरूप अपरिवर्तनीय है।
पार्थ, जिस प्रकार परमात्मा का रूप अपरिवर्तनीय है, उसी प्रकार आत्मा का रूप भी अपरिवर्तनीय है। रूप परिवर्तन होता है इस देह का। इस जन्म में जो रूप है, वो भविष्य जन्म में कदापि नहीं होता। अर्थात 84 जन्मों में 84 भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं।
हे मधुसूदन, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका भी दैहिक रूप परिवर्तनशील है। आपने ही कहा है कि वर्तमान समय में ब्रह्मा हूं, सतयुग में आप ही श्री नारायण, तो त्रेता में आप ही श्री राम तथा द्वापर में राजा विक्रमादित्य आप ही हैं। हे चक्रधर, आपके समस्त रूपों को मैं जानना चाहता हूं।
पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि आदि से अंत तक अर्थात पूरे कल्प में मेरे 84 जन्म होते हैं। इन 84 जन्मों का उत्पत्ति स्थान ब्रह्मा का दिव्य जन्म ही है। इस सृष्टि में ऐसा कोई युग नहीं जिसमें मेरा जन्म हुआ ही नहीं। कलयुग के अंत में मैं ही ब्रह्मा और मैं ही शंकर हूं। मैं ही सभी पांडव में ज्येष्ठ पांडव हूं। कल्प कल्प सतयुग में मुझे ही सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। मैं ही भगवद गीता के रथ रथी सारथी का गुह्य रहस्य जानने वाला महारथी हूं। मैं ही भगवद गीता से निर्माण होने वाला श्रेष्ठ देवता हूं। मनुष्य सृष्टि के इतिहास में मेरे जैसा पुरुषोत्तम कोई नहीं हो सकता। पार्थ, ये अहंकार नहीं परंतु सत्य है। मैं ही श्री कृष्ण, तो मैं ही शेषशायी शैया पर चिंता मुक्त स्थिति में विराजमान होने वाला श्री नारायण हूँ। त्रेता युग में मैं ही धनुर्धारी श्री राम, तो द्वापर युग में मैं ही महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं ही शिवलिंग के सन्मुख ब्रह्मा अर्थात नंदी हूँ, तो मैं ही शिवलिंग के साथ पूज्य शालिग्राम हूँ। मैं ही सभी देवों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला शिवनंदन श्री गणेश हूँ, तो परमात्मा की प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात श्री दत्तात्रेय मैं ही हूँ। राजाओं का राजा एवं देवों का राजा मैं ही हूँ। मैं ही मनुष्य सृष्टि का अलौकिक पिता, सबसे पूर्वज आत्मा तथा मूल पुरुष हूँ। पार्थ, मैं ही इस विराट नाटक का मुख्य अभिनेता हूँ। मैं ही ब्रह्मा के रूप में मनुष्य सृष्टि के विराट कल्प वृक्ष की प्रारंभिक जड़ हूँ। मैं ही कलयुग में घनश्याम और सतयुग में मैं ही श्वेत वर्ण का मनमोहन हूँ। मैं ही भगवद गीता का प्रथम अर्जुन और मैं ही सतयुग का प्रथम राजकुमार हूँ। संगम युग में मैं ही अंतिम जन्म लेने वाली वृद्ध तनधारी मनुष्य आत्मा, तो सतयुग में मैं ही प्रथम जन्म लेने वाली बाल कृष्ण देवात्मा। ब्रह्मा के रूप में मेरा एक ही दिव्य जन्म होता है। मेरे द्वारा ही परमात्मा सतयुगी मनुष्य सृष्टि को निर्माण करते हैं। ब्रह्मा ही अपने पुरुषार्थ से श्री नारायण पद प्राप्त करता है। अतः सत्य तो यह है कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निर्माण नहीं हुआ, परंतु ब्रह्मा के नाभि से श्री विष्णु निर्माण हुए हैं। ऐसा ही चित्र अधिक यथा योग्य है। पार्थ, ब्रह्मा त्रिकाल ज्ञानी होने के कारण इस मनुष्य सृष्टि में उन्हें विशेष स्थान है। इसी के कारण आधा कल्प को ब्रह्मा का दिवस तथा आधा कल्प को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा का दिवस अर्थात सतयुग त्रेतायुग, वहाँ पवित्रता सुख शांति एवं वैभव का प्रकाश होता है। ब्रह्मा की रात्रि अर्थात द्वापर कलयुग में 5 विकारों का एवं अज्ञान का अंधकार होता है।
हे ज्येष्ठ भ्राता, आज मैं धन्य हुआ। इस परमात्म ज्ञान का एक एक गुह्य रहस्य मेरी बुद्धि में स्पष्ट हो रहा है, और मैंने ये भी प्रतीत किया है कि मैं भी पुरुषार्थ कर आप जैसा देवत्व पद प्राप्त कर सकता हूँ। कदाचित यही सोहम का रहस्य है।
तुम्हारा विधान सत्य है पार्थ, यही सोहम का रहस्य है। ज्ञान और योग के आधार से साधक को यही दिव्य स्मृति आनी चाहिए कि मैंने ही देवत्व पद प्राप्त किया था तथा मुझे ही देवत्व पद प्राप्त करना है। यदि तुम्हें ये दिव्य स्मृति आई है, तो जीवन में चतुर्भुज विष्णु के 4 अलंकार शंख चक्र गदा कमल धारण करो।
हे मर्यादा पुरुषोत्तम, कृपया आप इन 4 अलंकारों का स्पष्टीकरण करें।
ये अलंकार कोई स्थूल रूप में नहीं परंतु सूक्ष्म रूप में है। विष्णु के प्रथम हस्त में जो चक्र है, वास्तविक वो है स्वदर्शन चक्र, स्व अर्थात आत्मा, जिसने अनेक जन्म प्राप्त कर अपनी आत्मा के भिन्न भिन्न अवस्था का दिव्य दृष्टि से दर्शन किया है, वो है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने ही 84 जन्म एवं मृत्यु का यथार्थ चक्र प्रतीत करने वाला। पार्थ, स्वदर्शन चक्रधारी जानता है कि आत्मा निरंतर एक शरीर वस्त्र त्याग कर दूसरा शरीर वस्त्र धारण करती है। स्वदर्शन चक्रधारी ये भी जानता है कि जन्म मृत्यु के चक्र में आत्मा सतो प्रधान से रजो प्रधान, रजो प्रधान से तमो प्रधान होती है। पार्थ, स्वदर्शन चक्रधारी वो है जो त्रिकाल ज्ञानी है। स्वदर्शन चक्रधारी वो है जो आदि से अंत तक जन्म मृत्यु के चक्र में आता ही है, अर्थात संपूर्ण कल्प और चारों युगों की परिक्रमा अविरत करते ही रहता है। स्वदर्शन चक्रधारी को यह महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है कि देवता ही जन्म मृत्यु के चक्र में समस्त वर्णों को पार कर कल्प के अंत में संगम युग पर ब्राह्मण बनते हैं। तत्पश्चात परमात्मा इन अलौकिक ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र का ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण एवं ब्रह्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, क्योंकि उन्हें ही तीनों कालों का तथा अपने 84 जन्मों का पूर्ण ज्ञान होता है। परंतु स्वदर्शन चक्र विष्णु के हस्त में इसलिए दर्शाते हैं कि वो चक्र उसके हस्त में अधिक शोभा देता है। पार्थ, स्वदर्शन चक्र से माया पर सहज ही विजय प्राप्त होती है। जब विजय प्राप्त होती है तो शस्त्र भूमि पर रखा जाता है, अतः विष्णु ने अपने द्वितीय हस्त की गदा भूमि पर रखी है। इस प्रकार 5 विकारों का निर्मूलन होने से उसका जीवन कमल फूल समान पवित्र हो जाता है। इसी के कारण तृतीय हस्त में कमल फूल दर्शाते हैं, अर्थात जिसका जीवन संपूर्ण पवित्र है वो ही परमात्म ज्ञान का शंख ध्वनि यथार्थ रीति कर सकता है। अतः विष्णु के चतुर्थ हस्त में शंख होता है। ये शंख मधुर वाणी का भी प्रतीक है। अनुज, यही है चतुर्भुज विष्णु के 4 अलंकारों का रहस्य। अब तुम्हारे लिए यही पुरुषार्थ है।
हे पद्मनाभ, अब मेरे लिए कौन सा पुरुषार्थ है, कौन सा ऊंचा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है?
हे गुड़ाकेशा, तुम्हें भी स्वदर्शन चक्र धारण कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का तथा अपने 84 जन्मों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। जो मनुष्य आत्मा 4 युग अथवा 1 कल्प में 84 जन्म प्राप्त करती है, वास्तविक वही स्वदर्शन चक्रधारी है। यदि एक भी जन्म न्यून है तो उसे स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कह सकते। अतः जो परमात्मा ने वरदान दिया है वही वरदान मैं निमित्त होकर तुम्हें देता हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी भव, स्वदर्शन चक्रधारी भव, यही वरदान तुम्हें श्री विष्णु के भांति देवता करने वाला है। पुरुषोत्तम संगम युग ही स्वदर्शन चक्रधारी बनने का महान युग है। अतः इस युग का एक एक क्षण सफल करो पार्थ, एक एक क्षण सफल करो तो अन्य वरदान भी तुम्हें परमात्मा से प्राप्त होंगे, क्योंकि संगम युग पर वो सत्य ज्ञान सुनाकर अनेक वरदान लुटा रहा है।
वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, 8 ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले। कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले।
हे ज्येष्ठ भ्राता, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि आपने वरदान देते ही मेरी आदि अनादि स्मृतियाँ जागृत हो चुकी हैं। अर्थात मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हो चुका हूं। इस अलौकिक और महान प्राप्ति से मैं स्वयं को वंचित नहीं कर सकता। इस परमात्म ज्ञान में अथाह प्राप्ति है। हे मधुसूदन, इससे अधिक कल्याणकारी कौन सा ज्ञान हो सकता है? जिस ज्ञान से साधारण मानव भी स्वदर्शन चक्रधारी होकर जन्म जन्मांतर की अलौकिक प्राप्ति कर सकता है।
पार्थ, मुझे पूर्णतः संतोष है कि तुम्हारी विचारधारा परमात्म ज्ञान के मार्ग पर चल रही है। तुम्हारी ज्ञान युक्त वाणी तुम्हारे विचारों का प्रतीक है। ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहोगे तो तुम अपने लक्ष्य को अल्प काल में ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे प्रश्न एवं जिज्ञासा परमात्म ज्ञान के प्राप्ति का आधार है। बुद्धिवान वही होता है जिसके मन में प्रश्न निर्माण होते हैं, और जिसके मन में प्रश्न निर्माण होते हैं वही भविष्य में ज्ञान प्राप्त कर प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रह सकता है। इस प्रकार आज का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। कल हमारा स्वाध्याय आरंभ होता है कर्मों के गहन गति पर।
हे ज्येष्ठ भ्राता, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। आज का स्वाध्याय आपने अत्यंत उत्तम रीति से कथन किया है। जीवन मुक्त एवं कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना कोई सहज पुरुषार्थ नहीं है। ये दोनों अवस्था वही प्राप्त कर सकता है जिसका निराकार परमात्मा से तादात्म्य हो। हे वासुदेव, इस स्वाध्याय में आपने गुरु सद्गुरु एवं ज्ञान भक्ति का अंतर स्पष्ट करने से सद्गुरु परमात्मा के प्रति मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा। ये स्वाध्याय भगवद गीता का सारांश है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें मानव मात्र को श्रेष्ठ लक्ष्य दिया गया है। मैं इसका अभ्यास अवश्य करूंगा। हे श्रीधर, आपने अभी अभी घोषित किया है कि कल का स्वाध्याय कर्मों के गहन गति पर है। मेरा ये विश्वास है कि कर्मों के गहन गति का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य आत्मा को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। अतः हे श्रीनाथ, कल मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। तब तक के लिए आपको मेरा सादर प्रणाम।
ओम शांति। सभी भागों में ये भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कर्मातीत तथा जीवन मुक्त अवस्था का यथार्थ विवरण दिया है। अब आप सभी को ये ज्ञात हो चुका है कि मुक्ति जीवन मुक्तिदाता केवल निराकार परमात्मा ही है। मेरे भाई और बहनों, किसे मुक्ति प्राप्त होगी, किसे जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, ये तो वर्तमान समय हर एक आत्मा के अपने कर्म पर निर्भरित है। आज आपको ये महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है कि गुरु सद्गुरु तथा ज्ञान भक्ति में क्या अंतर है। ये सृष्टि परिवर्तन का अत्यंत मौल्यवान समय है, क्योंकि इसी समय परमात्मा ज्ञान द्वारा सारे आध्यात्मिक गुह्य रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप आप सभी ने विराट रूप का आध्यात्मिक रहस्य भी प्रतीत किया है। इस विशाल संसार में अत्यल्प मनुष्य ही जानते हैं कि श्री कृष्ण एवं श्री नारायण ये कृष्ण के एक ही जन्म के दो नाम है। उसी प्रकार परमात्मा अवतरण के पूर्व श्री कृष्ण के 84 जन्मों का ज्ञान तनिक मात्र भी किसी को नहीं था। यदि आप विस्तार में श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आने का कष्ट करें। ओम शांति।